नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हथियारबंद समूह के ठिकानों को निशाना बनाया है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार तड़के पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े दो स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए थे, जो पिछले हफ्ते की शुरुआत में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बीते दिनों कई रॉकेट मिसाइल हमले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीरिया से लेकर इराक तक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। पेंटागन के अनुसार 17 अक्टूबर के बाद से इराक में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों पर कम से कम 12 और सीरिया में 4 हमले हुए हैं। वायुसेना ब्रिगेडियर और जनरल पैट राइडर ने कहा है कि उन दो हमलों में 21 अमेरिकी कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें इराक में अल असद एयरबेस और सीरिया में अल तनफ गैरिसन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सिंगापुर में 2021 में हुई एक दुर्घटना में एक साइकिल चालक की मौत के मामले में भारतीय मूल के 70 वर्षीय व्यक्ति को 12 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई और जेल से रिहा होने के 8 साल बाद तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। भगवान तुलसीदास बेनवानी ने 65 वर्ष की उम्र होने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था और वो अगले 3 साल तक गाड़ी चलाता रहा। इसी बीच ये जानलेवा दुर्घटना हो गई। अदालत ने उस पर 3,800 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। द स्ट्रेटस टाइम्स की खबर के अनुसार उसने 54 वर्षीय श्रमिक खान सुरूज की मौत का एक आरोप पहले स्वीकार कर लिया था, फिर उसने बिना वैध लाइसेंस होने और वैध सीमा के बिना गाड़ी चलाने के दो अन्य आरोप भी स्वीकार कर लिए। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 68 वर्ष के थे। ली करीब एक दशक 2013 से 23 तक चीन के दूसरे नंबर के नेता रहे और निजी व्यवसाय के पैरोकार रहे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनफिंग को खुद को देश का सबसे शक्तिशाली नेता स्थापित करने और अर्थव्यवस्था तथा समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उनके पास बहुत कम अधिकार बचे थे। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने बताया कि ली हाल ही में शंघाई में रह रहे थे तथा उन्हें बृहस्पतिवार को दिल का दौरा पड़ा। उनका देर रात 12:10 पर निधन हो गया। अंग्रेजी भाषी अर्थशास्त्री ली को 2013 में कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता हु जिनताओ का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन सत्ता शी के हाथ में चली गई थी। इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हथियारबंद समूह के ठिकानों को निशाना बनाया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार तड़के पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े दो स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए, जो पिछले हफ्ते की शुरुआत में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बीते दिनों कई रॉकेट मिसाइल हमले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीरिया से लेकर इराक तक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। अमेरिका के मेन प्रांत में गोलीबारी की घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य घायल हो गए हैं। ये जानकारी मेन प्रांत की गवर्नर जेनेट मिल्स ने बृहस्पतिवार को दी। लेविस्टन में एक व्यक्ति ने बुधवार को एक रेस्तरां और एक बॉलिंग एले में गोलीबारी की और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने लोगों से घरों के भीतर रहने तथा सड़कों पर नहीं निकलने की अपील की और आरोपी की तलाश में व्यापक अभियान शुरू किया। पुलिस के एक बुलेटिन में संदिग्ध की पहचान रॉबर्ट कार्ट के रूप में की गई है, जो अमेरिकी सेना रिजर्व प्रशिक्षण केंद्र में आग्रेया शस्त्र प्रशिक्षक था। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने देश भर में होल्डिंग सेंटर स्थापित किए हैं और 31 अक्टूबर की समय सीमा तक अनुमानित 17 लाख अफगान नागरिकों सहित अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की योजना को अंतिम रूप दिया है। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने 17 लाख अफगान नागरिकों सहित दस्तावेज नहीं रखने वाले सभी अप्रवासियों को समय सीमा तक पाकिस्तान छोड़ने या कारावास व निर्वासन का जोखिम उठाने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान सरकार ने हालांकि कहा कि निर्वासन की घोषणा अफगानों तक ही सीमित नहीं थी और ये सभी अवैध अप्रवासियों पर लागू है, लेकिन कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने बृहस्पतिवार को उन्हें दोषी ठहराया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने एआई के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शासन और उनके जोखिमों, चुनौतियों एवं अहम अवसरों पर रिपोर्ट देने के लिए बृहस्पतिवार को 39 सदस्यीय वैश्विक परामर्श समिति का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लैंगिक रूप से संतुलित भौगोलिक रूप से विविध समूह वर्ष के अंत तक प्रारंभिक सिफारिशें जारी करेगा और 2024 की गर्मियों तक अंतिम सिफारिशें जारी करेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।